ये आकाशवाणी है। अब आप जया भारती से समाचार सुनिए। नई दिल्ली में आज प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। मंत्रिमंडल ने स्किल इंडिया कार्यक्रम को 2026 तक जारी रखने और उसके पुनर्गठन को मंजूरी दी। 2022-23 से 2025-26 तक 8,800 करोड़ रुपए की लागत के साथ इस कार्यक्रम को स्वीकृति दी गई। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जानकारी दी। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के विस्तार की भी मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से फ्रांस की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वे वहां एआई एक्शन शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी सोमवार शाम को पेरिस पहुंचेंगे। वे फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा एलिसी पैलेस में आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। श्री मिश्री ने बताया कि प्रधानमंत्री मंगलवार को राष्ट्रपति मैक्रों के साथ एआई एक्शन शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे और भारत फ्रांस सीईओ फोरम को संबोधित करेंगे। श्री मोदी बुधवार को युद्ध स्मारक जाएंगे और प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। दोनों नेता संयुक्त रूप से मार्सिले में भारत के नवीनतम महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी बुधवार और बृहस्पतिवार को अमरीका यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे अमरीका के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। अमेरिका से भारत के अवैध प्रवासियों के निर्वासन पर विदेश सचिव ने कहा कि इन लोगों के साथ दुर्व्यवहार का मामला उठाना एक वैध मुद्दा है। उन्होंने कहा कि भारत लगातार अमेरिकी अधिकारियों पर जोर डालता रहा है कि निर्वासित लोगों के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए करीब 5 वर्ष बाद रेपो रेट में 25 आधार अंकों की कमी की है और इसे 6.5% से घटाकर 6.25% कर दिया है। केंद्रीय बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की 3 दिन की बैठक के बाद आज मुंबई में यह घोषणा की। केंद्रीय बैठक ने वर्ष 2025-26 में सकल घरेलू उत्पाद के 6.7% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कल होने वाली मतगणना की सभी तैयारियां पूरी हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी आर एलिसवाज ने बताया है कि सुचारू और निष्पक्ष मतगणना प्रक्रिया के लिए सभी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी ईवीएम की सुरक्षा के लिए अधिकारी तैनात हैं। लोकसभा में आम बजट 2025-26 पर चर्चा हुई। चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के धर्मवीर गांधी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय बजट देश के सामने मौजूद कृषि चुनौतियों का समाधान करने में विफल रहा है। उन्होंने किसानों की आत्महत्या का मुद्दा भी उठाया। तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी का मुद्दा उठाया। भाजपा के राव राजेंद्र सिंह ने चर्चा में भाग लेते हुए केंद्रीय बजट की सराहना की और कहा कि इसमें गरीबों, किसानों तथा महिलाओं के हितों का ध्यान रखा गया है। तेलुगु देशम पार्टी के दगमल्ला प्रसाद राव ने कहा कि यह विकसित भारत बजट विकास के लिए एक मजबूत आधार तैयार करने के लिए बनाया गया है। सरकार ने आज कहा कि चालू वित्त वर्ष के लिए रक्षा आधुनिकीकरण के लिए बजटीय आवंटन में 6.34% की वृद्धि की गई है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने यह जानकारी दी। सरकार ने कहा है कि उसने टकराव वाले सभी स्थानों से सैनिकों की पूर्ण वापसी सुनिश्चित करने और भारत चीन सीमा पर शांति बहाल करने के लिए राजनयिक तथा सैन्य दोनों माध्यमों का इस्तेमाल किया है। विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। 9वीं एशियाई शीतकालीन खेल आज चीन के हार्बिन में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू हुए। 14 फरवरी तक चलने वाली प्रतियोगिता में 34 देशों के 1200 खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। भारत ने प्रतियोगिता में अब तक का सबसे बड़ा 59 खिलाड़ियों का दल भेजा है। फीफा ने संविधान में संशोधन और निष्पक्ष चुनाव कराने में विफल रहने के कारण पाकिस्तान फुटबॉल महासंघ पीएफएफ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। 2015 के बाद से यह तीसरी बार है जब पीएफएफ को वैश्विक फुटबॉल निकाय द्वारा निलंबन का सामना करना पड़ा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।